नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, आपका स्वागत है।
धन्यवाद शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दूसरे दिन भी कर्नाटक का दबदबा जारी। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। तीरंदाजी एशिया कप के पहले चरण में चिकिता तनिपार्थी और रजत चौहान ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में प्रवेश कर एक और पदक पक्का किया। और बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के 2026-27 के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सीजन का कार्यक्रम जारी किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज तैराकी, भारोत्तोलन, हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले देखने को मिले। एक रिपोर्ट।
कर्नाटक के तैराक मणिकांत एल ने आज 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। वहीं ओडिशा की अंजलि मुंडा ने महिलाओं की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में स्वर्ण पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारोत्तोलन में असम की मोनिका सोनोवाल ने 48 किलोग्राम वर्ग और मिजोरम के इसाक माल सावमत लुआंगा ने 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल तैराकी, भारोत्तोलन, हॉकी, फुटबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
इससे पहले कल शाम रायपुर में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अब हर वर्ष छत्तीसगढ़ में ही आयोजित किए जाएंगे। श्री मांडविया ने 2047 में भारत को खेलों के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
मेरा पक्का विश्वास है एशियन गेम्स में भारत का परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। यहाँ से निकलने वाली टैलेंट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का गौरव बढ़ाएगा और 2036 में हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत में ओलंपिक्स का आयोजन हो। और जब ओलंपिक्स का आयोजन हो ना, तब मोदी जी ने कहा है कि भारत को हमें 1 से 10 के स्पोर्टिंग नेशन में ले जाना है। और 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें भारत को 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में शामिल करना है।
तो लक्ष्य कितना मजबूत है, कितना बड़ा है और उसके लिए जो कदम लगातार रखे जा रहे हैं, खेलो इंडिया पूरा मनेला बन के उभरा है। मलय, कितना सार्थक मंच है ये?
देखिए, मंच तो बहुत सार्थक है क्योंकि पूत के पांव पालने से ही दिखाई देने लगते हैं, पुरानी कहावत है। लेकिन पांव को पहचानने वाली नजरें भी चाहिए जो प्रतिभा को पहचाने और उसके बाद उसको तराशे। अक्सर ये होता था कि जिस प्रकार से भारत में खेलों की संस्कृति का एक अभाव था, जिसमें ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलों को कूदोगे तो होगे खराब, उस एक जो वो मिथक था उसको तोड़ा है खेलो इंडिया ने। और ये जो आप खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स या जनजातीय खेलों की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है, एक अनोखा प्रयोग है, क्योंकि इसमें न सिर्फ खेलों की चर्चा है बल्कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर, उसको भी आगे लाकर और जनता के सम्मुख रखने का। ये बात नहीं है कि जनजातीय जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो कम रही है। अगर आप देखें तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही भारत के एक जनजातीय खिलाड़ी मुंडा हॉकी टीम में थे। उसके बाद कितने नाम आए, माइकल किंडो, सिल्वानुस डुंडुंग, लकरा टिर्की, बहुत सारे, दीपिका कुमारी, ऐसे कितने नाम हैं जो जनजातीय बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से खिलाड़ी आए और उन्होंने अच्छा किया। तो इस प्रकार से जब आप बच्चों को उनकी कम उम्र में ही उनको पहचान कर, उनकी प्रतिभा को पहचान कर, उसके विकास में, उसको तराशने में अगर आप भूमिका निभाएंगे और इस तरह की प्रतियोगिताएं जो हर वर्ष जैसा कि खेल मंत्री ने कहा है, हर वर्ष होंगी छत्तीसगढ़ में, तो उससे मनोबल बढ़ेगा, उससे एक नई उम्मीद जगेगी, उदयमान सितारों को जगमगाने का एक मौका मिलेगा।
जी बिल्कुल, और इन तमाम जगमगाते जुगनुओं को हम एक दिन आसमान में तारों की तरह और शिखर की तरह जगमगाते देखें, यही हमारी उम्मीद है। और आज जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तो कर्नाटक जो है 8 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर काबिज है अपनी कल की बढ़त को आगे बढ़ाते हुए। ओडिशा 5 स्वर्ण पदक लेकर के कुल 14 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। और अब खेलो इंडिया से चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ, जहां मालदीव के माले में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने आज पाकिस्तान को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। तो भारत के लिए तीसरे मिनट में विशाल यादव ने पहला गोल किया, फिर इसके बाद देखा जाए तो उमंग डोडुम के 2 गोल और पाकिस्तान पस्त। हर खेल में हमारे प्रतिद्वंदी बन के आते हैं, लेकिन वापस भारत को एक बार जीत मिली।
बिल्कुल, 3-0 की जो जीत है ये बहुत मायने रखती है। देखिए, जो मोहाली के नेशनल स्टेडियम में ये मैच हुआ, दोनों मतलब चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे स्वांग भरता है कि हमारी टीम से बड़ा कोई टीम है ही नहीं, हमारी बड़ी कोई टीम है ही नहीं। लेकिन जो सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में तो गोल खा ही गए थे, जब सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि उनका जो इंटेंट है, एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर हम फुटबॉल के मैचों में देखते हैं, जब आपको अवसर मिलते हैं, उन अवसरों को आप गोल में बदलने में कामयाब होते हैं, तभी आप जीतते हैं। कितने अटेम्प्ट्स आपने गोल पर लिए, ये कोई मायने नहीं रखते। कितनी बार गेंद गोल पोस्ट के अंदर गई, ये मायने रखता है। और वहां आपने देखा कि कई बार बहुत ही अटैकिंग गेम, बहुत ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाए और भारत ने 64वें मिनट में लीड ले ली। और पाकिस्तान उसके बाद भी अटैक करता रहा, पकर 84वें मिनट में प्रशांत को लाया गया बॉक्स में और डोडम ने उन्होंने एक मूव बनाया जिसको सीधा उन्होंने गोल में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी फुटबॉल में भारत से कहीं ज्यादा पीछे है, और भारत बहुत आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन 2025 जो था वो भारत के लिए, भारतीय फुटबॉल के लिए एक अच्छा साल नहीं था। तो जब आप अंडर 20 खिलाड़ियों को देखते हैं तो ऐसी उम्मीद जगती है कि आने वाले दिनों में भारत फुटबॉल में भी कहीं ना कहीं अपनी जगह उसी तरह से कायम कर लेगा जिस तरह 60 के दशक में भारत एशियाई चैंपियन था, भारत ने ओलंपिक में भी फुटबॉल में हिस्सा लिया था।
और इसके साथ पाकिस्तान इस प्रतियोगिता से बाहर हो गया और भारत ने अपने सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप प्रतियोगिता के पहले चरण में आज चिकिता तनी पार्थी और रजत चौहान ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम के फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही भारत का प्रतियोगिता में एक और पदक पक्का हो गया है।
शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की चिकिता और रजत की जोड़ी ने आज चीनी ताइपे को 159-155 और कजाकिस्तान को 157-153 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां इस जोड़ी का मुकाबला मलेशिया से होगा। वहीं रिधि फोर और देवांग गुप्ता की भारतीय रिकर्व्ड मिक्स टीम को भी पहले दौर में बाई मिली, हालांकि उन्हें वियतनाम से 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत ने कल 2 कांस्य पदक अपने नाम किए थे और 5 इवेंट के फाइनल में पहुंचकर 5 पदक भी पक्के किए थे। इसके अलावा भारत 2 और कांस्य पदकों के लिए दावेदार भी है। भारतीय युवा तीरंदाज के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पिछले वर्ष के पदकों का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। भारत ने पिछले वर्ष 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते थे। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो जब ये भारतीय युवा टीम बैंकॉक के लिए जा रही थी तो लोगों के मन में अलग अलग सवाल थे कि सीनियर खिलाड़ियों को बैठा करके नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। टीम मैनेजमेंट का मानना था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ पे होगा, लेकिन ये टीम तो लगातार करिश्मा कर रही है और कल के दिन भारत 6 से 8 फाइनल मुकाबले खेलेगा।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो 16 सदस्यीय भारतीय दल वहां गया उसमें नए चेहरे थे, 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी, और रिकर्व और कंपाउंड डिसिप्लिन्स में इन लोगों को दांव लगाने थे। जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, ये तय मानिए कि भारतीय तीरंदाजी में आने वाली जो पीढ़ी है वो भारत के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें कि सिर्फ एक जो 2 कांस्य पदक मिले हैं, वहीं तक नहीं है बात। समाचार ये कह रहा है कि 2 कांस्य पदक मिले हैं, लेकिन समाचार ये भी कल आने वाला है कि फाइनल्स में गोल्ड मेडल की दौड़ में कई इवेंट्स में भारत शामिल है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रुमा विश्वास, कीर्ति, रिधि, इनकी जो रिकर्व टीम थी उन्होंने मलेशिया को 5-1 से हराया, बहुत ही शानदार जीत उन्होंने हासिल की। और मेंस कंपाउंड इवेंट में रजत चौहान, उदय काम्बोज, ऋषभ यादव, उन्होंने भूटान को हराया, बहुत ही कांटे की टक्कर थी, 234 से 234 मात्र दो अंकों का वहां अंतर था जब ब्रॉन्ज मेडल का क्लैश हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो 21-26 के साथ कंपाउंड मेंस क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम टॉप पर रही। रजत चौहान ने 712, ऋषभ यादव 708 और उदय काम्बोज 706 के साथ इस तरह का जो प्रदर्शन आपको देखने को मिला है और जो अंतिम दिनों में जो भारतीय पदकों की जो झड़ी लगने वाली है एक तरह से कहें तो उसमें वुमेन्स कंपाउंड में मेडल अश्योर हो गया है, मेंस रिकर्व में मेडल अश्योर है, सुनिश्चित है कि मिलेगा ही मिलेगा और गोल्ड मेडल मैचेस के लिए कजाकिस्तान में जो मुकाबला होगा फ्राइडे को शुक्रवार का तो उसमें देखने को मिलेगा आपको कि कई और पदक भारतीय तीरंदाजों के गले में उतरेंगे।
जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि कल का दिन जो है भारतीय तीरंदाजों के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होने वाला है और मेडल टैली में वापस भारत सबसे ऊपर आता हुआ नजर आएगा। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के 2026-27 के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सीजन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें क्रिकेट प्रेमियों को मेहमान टीमों वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई प्रारूपों में रोमांचक मुकाबले और एक्शनों के भरपूर मुकाबले देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट।
इस सत्र में 17 शहरों में 22 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। इसकी शुरुआत वेस्टइंडीज के भारत दौरे से होगी जो 27 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरे में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला और उसके बाद 5 टी20 मैचों की श्रृंखला होगी। फिर भारत दिसंबर में श्रीलंका की मेजबानी करेगा जिसमें 3 एकदिवसीय और 3 टी20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। नए वर्ष 2027 की शुरुआत में जिम्बाब्वे भारत का दौरा करेगा जहां 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। सत्र का समापन बहुप्रतीक्षित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी जो 21 जनवरी 2027 से नागपुर में शुरू होगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
इसके साथ ही बीसीसीआई ने आईपीएल के जो शेष मैच बचे थे उसके दूसरे चरण का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस दौरान 12 शहरों में 50 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहर शामिल हैं जहां 13 अप्रैल से 24 मई तक ये मुकाबले खेले जाने हैं। तो कह सकते हैं कि खेल प्रेमियों ने अपने अपने कैलेंडर पे गोले लगा लिए होंगे कि कब कब रोहित शर्मा और विराट कोहली देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल ही नेपथ्य में चली गई थी जो क्रिकेट के बादशाह कहे जाते थे और जिस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कहां गुम हो गई और ये दोनों टीमें बहुत ही जद्दोजहद के बाद, बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पटल पर उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है जो आपने देखा टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें, और ये दोनों टीमें भारत आएंगी तो भारत के लिए अच्छा मौका रहेगा अपनी टीम, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जांचने का, अभ्यास का और कहीं भी कोई कमी न रह जाए यह सुनिश्चित करने का, क्योंकि वेस्टइंडीज के साथ 8 मुकाबले होने हैं, 3 एकदिवसीय और 5 2020। श्रीलंका के साथ 6 मैच होंगे, 3 एकदिवसीय और 3 2020। जिम्बाब्वे के साथ 3 एकदिवसीय मुकाबले होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्टों की गावस्कर ब्रॉडर ट्रॉफी जो भारत के हाथों से फिसल गई थी उसे लाने का दोबारा प्रयास करेगी भारतीय टीम। ये बहुत ही अहम मैच होंगे और मुझे लगता है कि भारत का जो ये आने वाला कैलेंडर है, क्रिकेट कैलेंडर जिस तरह से इसको बनाया गया है, भारतीय क्रिकेट के उत्तरोत्तर विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि जिन टीमों से भारत भिड़ेगा वो टीमें भारत को कुछ न कुछ देकर जाएंगी, कुछ सिखा कर जाएंगी।
जी बिल्कुल, और ये कैलेंडर इस मायने में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत आने वाले समय में अगले साल उसकी नजरें विश्व कप पे भी होंगी, तो एक मजबूत टीम बनाना और अपनी टीम को वापस उन्हीं हौसलों को वापस हासिल करने पे टीम की नजरें होंगी। भारतीय स्कीट निशानेबाजी टीम कल से मोरक्को में शुरू हो रहे ISSF शॉटगन विश्व कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 2026 सीजन के उद्घाटन समारोह में दुनिया के कई दिग्गज निशानेबाज अपना निशाना साधते हुए नजर आएंगे। वहीं एथलेटिक्स में मौजूदा एशियाई चैंपियन और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुलवीर सिंह रविवार को बेंगलुरु में होने वाले वर्ल्ड 10K यानी 10 किलोमीटर दौड़ में भारत का नेतृत्व करते नजर आएंगे। इस प्रतियोगिता को एथलेटिक्स में गोल्ड लेवल का दर्जा प्राप्त है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, धन्यवाद मिला है आपका।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।